वहीं उनका लालन पालन हुआ और वहीं उनके पुत्रों का जन्म हुआ। वहीं उनके बच्चों को संस्कारवान बनाया गया। राम का काम करने वाला बड़ा होता है, राम का नाम लेने वाला नहीं।
समझे भगवान के स्वरूप को।
मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राम के स्वभाव को जानना पड़ेगा और राम के स्वरूप को समझना पड़ेगा। राम का स्वभाव और राम का स्वरूप यदि आप जान लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 90% समस्या हल हो जाती है। थोड़ी सी बात रह जाएगी तो उसे मैं मिनटों में आपको बता दूंगा।
राम का स्वरूप दिखाने के लिए रामचंद्र जी को 2 बार मौका मिला और श्री कृष्ण भगवान को अपना विराट रूप दिखाने का 2 बार मौका मिला। एक बार श्री कृष्ण भगवान मिट्टी खा रहे थे, अपने मुंह में मिट्टी भरते हुए चले जा रहे थे और उसे खाते हुए चले जा रहे थे। बच्चे की यह गलती देख करके यशोदा जी बहुत नाराज हुई। उन्होंने बच्चे का कान पकड़ लिया,
पूछा, क्यों
तूने मिट्टी खाई है? बच्चा ही तो था।
कहने लगा, नहीं, हमने नहीं खाई है। झूठ बोलता है, एक तो मिट्टी खाता है, ऊपर से झूठ बोलता है।
अच्छा, मुंह दिखा कि मिट्टी खाई है कि नहीं खाई? भगवान ने अपना मुंह फाड़ा। मुंह फाड़ने पर यशोदा ने क्या देखा? भगवान का असली स्वरूप देखा। सारा विश्व ब्रह्मांड उनके मुखारविंद में था। सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सारी वसुधा वसुंधरा भगवान के मुंह में थी। उन्होंने कहा, देखा मेरा स्वरूप, यह सारा विश्व है ब्रह्म का रूप। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, यह सारा विश्व, यह सारी वसुंधरा, यह है मेरा रूप।
खिलौनों के रूप में नहीं, मूर्तियों के रूप में नहीं, तस्वीरों के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में नहीं, वरन में सारे विश्व ब्रह्मांड में आत्मा के रूप में हूँ।
आत्मा के भीतर विद्यमान हूँ, सबके अंतःकरण में विद्यमान हूँ। यह सारा विश्व भगवान का स्वरूप है।
देखना है तो देख और मेरा स्वरूप समझ।
माता यशोदा का स्वर मंद पड़ गया,
उन्होंने आंखें बंद कर ली।
एक बार और मौका आया अपना विराट रूप दिखाने को। महाभारत युद्ध चल रहा था।
अर्जुन खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा,
मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान गीता की कथा सुनाने लगे और गीता की कथा सुनते सुनते अर्जुन के अंदर ज्ञान का उदय हो गया। उसने कहा, भगवान,
आपने जितनी कथा की है हमारा एक और काम कर दीजिए।
उन्होंने कहा, कौन सा काम? उसने कहा, मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए,
मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ।
मित्रों,
भगवान ने कहा, इन आँखों से तू दर्शन कैसे करेगा?
अर्जुन ने कहा, इन आँखों से ही करना चाहता हूँ।
भगवान ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। चमड़े वाली आँख से चमड़े की चीजें दिखाई जा सकती हैं, पंचतत्वों से बनी चीजें दिखाई जा सकती हैं,
खिलौने दिखाए जा सकते हैं,
तस्वीरें दिखाई जा सकती हैं, इंसान दिखाए जा सकते हैं, भगवान नहीं। भगवान किस तरीके से दिखाए जाएंगे?
उन्होंने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगमेश्वरम्, मैं तुम्हारे लिए दूसरी आँखें दूंगा, नया लेंसला करके दूंगा, नया माइक्रोस्कोपला करके दूंगा।
तू उस आँख से देख कि मेरा स्वरूप क्या है।
भगवान ने अर्जुन की विवेक की आँखें खोल दी। अर्जुन ने देखा कि यह सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, सारी वसुंधरा, सारी वसुधा और आकाश से लेकर पाताल तक भगवान का विराट रूप देखा। अर्जुन धन्य हो गया। विवेक की आँख से देखने के बाद अर्जुन धन्य हो गया।
हम चमड़े की आँख से भगवान को देखते हैं, अनुभूति से होते हैं भगवान के दर्शन।
गुरुजी, भगवान के दर्शन करा दीजिए, गायत्री माता के दर्शन करा दीजिए,
शंकर जी के दर्शन करा दीजिए। देख लो, यह तांबे की तस्वीर है जिसमें शंकर भगवान बैठे हुए हैं।
हाँ महाराज जी,
बैठे तो हैं पर इससे हमें संतोष नहीं हुआ।
फिर कैसे देखोगे?
ऐसे देखेंगे जिसकी जटाएं हों, जिसके बाल हों। चला जा मंदिर में गंगेश्वर महादेव के पास, वहाँ शंकर जी की जटाएं भी हैं, त्रिशूल भी हैं, शंकर जी के चांदी की आंखें भी लगी हुई हैं। चलिए शंकर जी को दिखा कर लाते हैं।
नहीं महाराज जी, यह तो मंदिर में पहले भी हमने देखे थे।
आप जिसकी बात करते हैं वहाँ तो हम चाहे जब चले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। अच्छा, तो आप कौन से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? जो हंसते हों, चलते हों, बोलते हों, बातचीत करते हों, ऐसे शंकर जी चाहिए, तो फिर परसों आना।
क्यों?
परसों क्या है? उनके बालक का नाटक होने वाला है,
गणेश जी का जन्मदिन आने वाला है।
जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, काम बहुत है। सुबह गंगा नहाते हैं और गणेश जी का सिर काटते हैं और हाथी का सिर ले आते हैं और चिपका देते हैं। पार्वती जी से बात करते हैं।
वहाँ मैं आपको शंकर जी को हंसता खेलता, खाता पीता दिखा कर लाऊंगा। आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा।
नहीं महाराज जी,
सिनेमा वाला भगवान नहीं चाहिए, सिनेमा वाला नहीं चाहिए तो मूर्ख।
चमड़े वाली आँख से भगवान कभी नहीं देखा गया, अनुभूतियों से भगवान आया है। आपको आंखों से भगवान नहीं दिखाया जा सकता, भगवान विवेक की आंख से ही देखा गया है।
मित्रों,
रामचंद्र जी पर दो बार ऐसी मुसीबत क्यों आई? कौशल्या ने कहा कि स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी के रूप में हमने लंबे समय तक तप किया था और कहा था कि भगवान हमारी गोदी में आए, लेकिन यह बच्चा तो पाखाना कर देता है, टट्टी कर देता है, यह चिल्लाता है,
दूध मांगता है।
यह तो बच्चा आ गया, भगवान कहाँ आया?
यह तो खाना मांगता है, लेकिन भगवान तो दुनिया को खिलाता था।
यह तो जब पेट में भूख लगती है तो हाय हाय मचाता है, चिल्लाता है और दूध मांगता है, यह कैसा भगवान है?
उन्होंने कहा, हमारी तपस्या बेकार हो गई। कौशल्या ने कहा, भगवान तो गंदगी नहीं करते।
भगवान तमाम दिन खाना खाते हैं पर टट्टी नहीं करते। भगवान की पहचान क्या है? खाना सब दिन खाओ और टट्टी न करो। एक महात्मा जी आए जिन्होंने गोरक्षा आंदोलन के बारे में अनशन शुरू कर दिया।
हमारी तीर्थयात्रा थी, अतः मैं भी जाने लगा।
सोचा पास की बात है, जरा देखकर आऊं और पता लगाकर आऊं कि क्या काम चल रहा है। देखूं तो सही कि स्वामी जी का अनशन आजकल कैसा चल रहा है। हमने उन्हें खाते हुए तो नहीं देखा पर टट्टी जाते हुए देखा है, एक व्यक्ति ने बताया। इस पर उन्होंने कहा, ऋषियों की पहचान यह है कि जो खाए कभी नहीं और टट्टी दोनों बार जाए, और भगवान की पहचान यह है कि वह खाए कई बार और टट्टी कभी न जाए।
मित्रों,
यह फर्क क्यों है?
कौशल्या ने कहा, टट्टी तो नहीं जाता।
टट्टी जाता हुआ भगवान नहीं हो सकता। भगवान राम ने संदेह दूर करने के लिए कहा कि जिस रूप में मुझे देखना चाहती थी, गोदी में खिलाते हुए, ऐसा मुझे किसी नहीं खिलाया।
भगवान ने कहा, मुझे ऐसे नहीं खिलाया जाता तो कैसे खिलाया जाता है?
उन्होंने कहा, मुझे हृदय में खिलाया जाता है, मुझे मस्तिष्क में खिलाया जाता है, मुझे भावना में खिलाया जाता है,
मुझे नियति की गोदी में खिलाया जाता है। और तब भगवान ने कौशल्या को अपना विराट स्वरूप दिखाया। कौशल्या ने जब भगवान का विराट स्वरूप देख लिया तो उसका मन विचलित हो गया।
उसने कहा, रामायण का एक छंद आता है जिसका भाव है कि आप अपने इस स्वरूप को समेट लें और मुझे अपने शिशु के रूप में सुख और आनंद प्रदान करें।
भगवान ने अपनी माया समेट ली और कौशल्या ने देखा कि भगवान पुत्र रूप में उन्हें मिल गए।
अब तो आप भी समझ लें कि माया उसी तरह से है जैसे कि उन्होंने भगवान को अपना विशेष समझ लिया था। कैसे मिलते हैं भगवान?
मित्रों, एक बार काकभूषुंडी जी को भी भगवान मिले थे।
उनको शंकर जी ने बताया कि रामचंद्र जी का अवतार हो गया है,
जाओ भगवान का दर्शन करके आओ। काकभूषुंडी जी उनके पास आए।
उन्होंने देखा कि वह तो चावल खाता फिरता है और भाइयों से लड़ता फिरता है, आपस में बोलता रहता है, भगवान कहीं ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, भगवान वैसा होता है।
जो भी हो, यह भगवान नहीं हो सकता।
कोय ने क्या किया? कोय ने सोचा, चलो परीक्षा करें कि यह भगवान है भी या नहीं है।
बस जैसे ही चावल खाने के लिए रामचंद्र जी ने मुंह फाड़ा, बस काकभूषुंडी मुंह में घुस गए और पेट में चले गए।
उसने कहा, देखूं तो सही पेट में कुछ है कि नहीं। बच्चा होगा तो डॉक्टर को बुलाएगा, उल्टी कराएगा और गले में से निकालेगा। भगवान होगा तो उसके पेट में गंगा ही गंगा होगी। कौवा पेट में घुसता हुआ चला गया।
उसने वहां देखा कि सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के पेट में भरा हुआ पड़ा था। मित्रों, यह है भगवान का स्वरूप। उसके साथ में मैं आपका रिश्ता बनाना चाहता था।
उसके साथ में आपका ब्याह कराना चाहता था।
उसके साथ में आपकी दोस्ती बढ़ाना चाहता था।
भगवान व्यक्ति नहीं है।
व्यक्ति हमारी भावनाओं को परिपक्व करने के लिए आध्यात्मिक प्रणाली है, प्रक्रिया है।
यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। यह एक माध्यम है, जैसे चंद्रमा पर यात्रा करने के लिए अमेरिकन लोगों का यह प्लान है। उसके अनुसार रास्ते में एक स्टेशन बनाया जाए जहां पर पेट्रोल मिल जाया करे और जहां पर मुसाफिर थोड़ा सुस्ता लिया करें, फिर चंद्रमा की यात्रा के लिए जाया करें। इसी तरह भगवान तक जाने के लिए बीच की एक मंजिल है जो हमने मनुष्य जैसा एक भगवान बनाया हुआ है। उसका हम ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, उपासना करते हैं, उसका हम अभिनंदन करते हैं, मस्तिष्क में हम उसका ध्यान लगाते हैं। यह तो बीच का स्टेशन है जो हमको भगवान तक पहुंचाने में समर्थ है।
क्या है भगवान का असली स्वरूप? लेकिन मित्रों, भगवान का असली स्वरूप वह है जो मैंने आपको निवेदन किया।
राम और कृष्ण दोनों ने अपने भक्तों को अपना असली स्वरूप दिखाया। आप लोगों को समझने और जानने के लिए वही स्वरूप है। उसके साथ में किस तरीके से प्यार किया, कैसे उसका वंदन और पूजन किया जाए, कैसे उसकी अर्चना की जाए, इसके लिए आपको भावनात्मक पहलू भी जानना होगा।
उसमें कर्मकांड भी एक पहलू है।
पूजा करने की विधियां कर्मकांड का एक पहलू है, लेकिन भावना वाला स्तर सबसे बड़ा स्तर है। इस भगवान के साथ प्यार कैसे किया जाएगा, उस भगवान के साथ मोहब्बत किस तरीके से की जाएगी,
उस भगवान का अर्चन वंदन कैसे किया जाएगा,
इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक छो चौपाई में अध्यात्म का सारे का रहस्य खोलकर रख दिया है। भगवान से मिलने का सारा रहस्य और तौर तरीका एक छो चौपाई में, मजेदार चौपाई में रख दिया है।
सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
भगवान की पूजा करने और भगवान को प्राप्त करने का विधान यही है। सियाराममय दो तरह के प्राणी हैं, एक के लिए पुल्लिंग कहते हैं और एक के लिए स्त्रीलिंग कहते हैं। सृष्टि में ये बराबर हैं, एक को रही कहते हैं और एक को प्राण कहते हैं, एक को सोम कहते हैं और एक को अग्नि कहते हैं। यही सारी वसुधा और वसुंधरा अग्नि और सोम के रूप में, रही और प्राण के रूप में, नर और नारी के रूप में दो भागों में विभक्त है। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण क्या हो, इसके लिए बताया गया है कि उसमें जो पुल्लिंग वाचक हैं उनके साथ हमारी भावना राम की हो। राम की भावना होगी तो राम के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, राम हमारे घर पर आए तो राम की पूजा किस तरीके से करें, कैसे व्यवहार करें,
उसके लिए आपको विचार करना होगा। रामराज की दुकान पर गर्मागर्म मलाईदार दूध मिलता है,
ब्लॉटिंग पेपर के मलाई की बर्फी जमाई जाती है। दूध देंगे ताकि रामचंद्र जी महाराज की तिल्ली बढ़ जाए और इस दूध की वजह से वे सूख सूख कर कांटा हो जाएं। रामचंद्र जी महाराज को आप ऐसा दूध देंगे? नहीं, आप ऐसा दूध नहीं दे सकते।
जब आपको सारे विश्व में भगवान दिखाई पड़ेगा, जब आपको सारे समय भगवान दिखाई पड़ेगा, तब आप बच्चों के तरीके से विह्वल हो जाएंगे।
जब आपको सारे विश्व में भगवान दिखाई पड़ेगा तब आप बच्चों की तरीके से विह्वल हो जाएंगे।
मित्रों, एक किसान था और एक उसका बच्चा था।
दोनों पास में एक खेत काटने के लिए गए। बच्चे को खेत की मेड़ पर बिठा दिया और कहा, जरा देखते रहना, खेत का मालिक न आ जाए तब तक मैं फसल काट लेता हूँ, जब मालिक आ जाए तो बता देना।
बच्चा थोड़ी देर तक खड़ा रहा और किसान ने अनाज का गट्ठा काट लिया। तभी बच्चा चिल्लाया, पिताजी भागिए।
क्या हुआ?
खेत का मालिक आ गया, चलना चाहिए।
किसान अपने बच्चे के साथ भागने लगा, दोनों ही भागने लगे।
थोड़ी दूर जाकर किसान ने पूछा, खेत का मालिक कहाँ है जिसके कारण तूने मुझे भगाया?
उसने कहा, देखूं तो सही वह कौन है। पेड़ के ऊपर चढ़कर उसने देखा तो कोई कहीं नहीं दिखाई दिया।
उसने कहा, बच्चे,
यहाँ तो कोई नहीं है।
बच्चे ने कहा, पिताजी,
आपको मालूम है न, कल हम लोगों ने कथा में सुना था कि भगवान सब जगह विराजमान है, सब में विद्यमान है, भगवान सब में मौजूद है।
उसकी हजार आंखें हैं, ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिम सर्वत् स्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम।
अर्थात उसकी हजारों आंखें हैं, उसकी हजारों भुजाएं हैं, हजारों उसकी टांग हैं। ऐसा है भगवान जो हर जगह विद्यमान है, उसके रहते हुए चोरी करना क्या संभव है? उसने कहा, नहीं, चोरी करना संभव नहीं है।
इसलिए मित्रों,
जब हमको भगवान का साक्षात्कार होता है तो हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिसमें किसी का बुरा करना पड़ता हो,
उसके लिए विश्वास करना पड़ता हो,
किसी के साथ में अनीति और अन्याय करना पड़ता हो। ऐसा कोई काम वह आदमी नहीं कर सकता जो भगवान के बारे में जानकारी रखता हो।
भगवान को पाने की कम से जिसको जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के आचरण को अक्षुण बनाए रह सकता है।
भगवान हमारे अंदर ही नहीं है, वरन सब प्राणियों के भीतर हैं।
मित्रों,
सिकंदर ने एक बार राजा पोरस को गिरफ्तार कर लिया और जेल खाने में डाल दिया। पोरस को कचहरी में पेश किया गया।
सिकंदर ने पूछा, पोरस, तेरे साथ में कैसा व्यवहार किया जाए? उसने कहा, ऐसा व्यवहार किया जाए जैसे कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर की आंखें झुक गईं।
उसने उसको रिहा कर दिया। उसने कहा, ठीक है, राजा का सम्मान राजा ही समझ सकता है,
आत्मा का सम्मान आत्मा ही समझ सकती है।
आप दूसरे मनुष्यों का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अत्याचार करते और पीड़ाएं पहुंचाते हैं, अनीति करते और शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं। ऐसे में मैं कैसे मानूंगा कि आप भगवान को जानते हैं? भगवान को पाने की बात तो बहुत दूर की है, आगे की बात है। आप भगवान को जानते हैं? आपने कहा, हम तो जानते हैं,
हम उज्जैन गए थे, वहां महाकाल के दर्शन करके आए थे। मित्रों,
आप कहते हैं कि हम बद्रीनाथ होकर के आए हैं और हम भगवान को जानते हैं। मैं नहीं जानता कि आप कैसे बद्रीनारायण का दर्शन करके आए हैं। आपने अपनी जबान पर काबू रखना सीखा नहीं, दूसरों का जी दुखाते रहे, दूसरों से कटुवचन बोलते रहे, दूसरों के साथ अनीति का व्यवहार करते रहे तो मैं कैसे मानूंगा कि आप सीए राममय सब जग जानी वाली चौपाई का एक खंड भी समझते हैं। जिस दिन आप इस चौपाई का एक खंड भी समझ जाएंगे, उस दिन सृष्टि के समस्त प्राणवानों के प्रति, समस्त जीवों के प्रति, नारी जाति के प्रति वैसा ही व्यवहार कर रहे होंगे जैसा कि व्यवहार करना चाहिए।
उनके प्रति सम्मान, उनका गौरव, उनका महत्व, उनका बड़प्पन, उनकी सत्यता, उनकी महानता आपकी आंखों में विद्यमान हो गई होगी।
उस दिन सच्चे अर्थों में आप सब में भगवान की विद्यमानता अनुभव करेंगे।
आज की बात समाप्त। ओम शांति है।